देंगे, यह है आठवां श्लोक है ना। ओके, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप कहेंगे कि आध्यात्मिक जगत तो शाश्वत है, तो फिर भगवान उसके कारण कैसे हैं? भगवान की संधिनी शक्ति से पूरा आध्यात्मिक जगत का विस्तार रहता है और वह शाश्वत है, फिर भी भगवान उसके कारण है। लेकिन कारण का आधार उस तरह से नहीं है जैसा कि हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं, कोई वस्तु नहीं थी और उसका कारण उसके पहले था और उसके कारण वो वस्तु आई। जैसे ये माइक इस तरह से नहीं था या माइक स्टैंड नहीं था, लोहा रहा होगा, उसके बाद लोहे को निकाला गया, उसे स्टील बनाया गया, स्टील को फॉर्म करके ये रूप दिया गया। इस प्रकार की धारणा को हमें आध्यात्मिक जगत में नहीं आरोपित करना चाहिए। भगवान भी शाश्वत हैं, आध्यात्मिक जगत भी शाश्वत है और उनकी शाश्वत शक्ति से वो उसका प्रकटीकरण हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि कब हुआ, ये कभी नहीं होता। ये प्रश्न सोचने का अर्थ है कि हमारी बुद्धि कंप्रेस्ड है, ठीक है। अनादि और अनंत के बारे में सोचना एक बद्ध आत्मा के लिए बड़ा मुश्किल है। क्या आपको इसमें और भागवतम के प्रथम श्लोक में कुछ कॉमन लग रहा है? भागवतम के प्रथम श्लोक की शुरुआत कैसे होती है? जन्मादयस्यतः। और यहां पे क्या देख रहे हैं आप? अहम सर्वस्य प्रभवो। क्या सामंजस्य दिखाई पड़ रहा है? जन्मादयस्यतः का अर्थ क्या होता है? जिससे सब कुछ आया है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो। आप देख रहे हैं कि सिमिलैरिटी है कि नहीं, ठीक है। और मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मतलब मैं ही भगवान, मैं सब कुछ मेंटेन भी करता हूं। ऐसा नहीं पैदा कर दिया अब दूसरा व्यक्ति मैनेज करे। जैसे कुछ लोगों का मत है कि बच्चे पैदा करते जाओ, अरे बोलो भाई उसका ध्यान कौन रखेगा? जिसने जन्म दिया है वही रोटी भी देगा। बात तो सत्य है, लेकिन इस ये कोई ये उत्तरदायित्व को नहीं दर्शाता है। तो भगवान जन्म भी दे रहे हैं और भगवान पालन पोषण भी कर रहे हैं। बात आपको बहुत सिंपल लगती है, विश्वास है? जितनी मात्रा में विश्वास होगा उतनी मात्रा में हम लोग इस जगत के किसी भी वस्तु से व्यक्ति से अपेक्षा नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा कौन करता है? भगवान ही करते हैं। माँ को भी पता नहीं होता कैसे उसके शरीर से बच्चे का पोषण हो रहा है, कुछ भी पता नहीं होता। कौन सा जीव उसके गर्भ में आया नहीं पता होता। ऐसे महाराज जी बोलते हैं कि क्या कोई व्यक्ति एक बोतल पानी भी लेके आता है माँ के गर्भ में कि भाई देखेंगे पानी मिल जाए कि नहीं? ट्रेन में जाते हैं ना हम लोग पानी की बोतल लेके, टिफिन लेके, सब भगवान व्यवस्था करते हैं ना। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब सोचते हैं भाई नौकरी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं, जो भली भांति जानते हैं, शास्त्र सुन करके समझ लेते हैं, तो एकाग्र भाव से, एकनिष्ठ भाव से कृष्ण का ही भजन करते, ठीक है। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण हैं। आप लोग आगे आ सकते हो, फैन भी थोड़ा आगे आ जाओ, गर्मी लग रही है तो कोई दिक्कत। आप इस लाइन को विचार करेंगे तो बहुत पावरफुल लाइन है। वेदों का ठीक से अध्ययन करने का क्या, ठीक से अध्ययन ना करने का अर्थ ये है कि खाली कर्म कांड पे ध्यान देना या फिर निराकार ब्रह्म को ही श्रेष्ठ मानना। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वेदों का अध्ययन किसके निर्देशन में करना चाहिए, एक बहुत श्रेष्ठ संस्कृत स्कॉलर के मार्गदर्शन में, नहीं नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, संस्कृत आती है तो उसे वेद का ज्ञान क्यों नहीं हो जाएगा। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गरो तथस्य ही कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। वेद सुनना चाहिए, भक्ति शास्त्र सुनना चाहिए, लेकिन भक्तों के मुख से, उफ़ करंट क्यों मार रहा है, नहीं भक्तों के मुख से। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आप लोग कृपया इसको पढ़िएगा, सनातन शिक्षा में महाप्रभु संबंध ज्ञान एक चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में अभिधेय ज्ञान और तीसरे चैप्टर में प्रयोजन ज्ञान को अच्छे से देते हैं। और यही वेदों का उद्देश्य है। और इसके अलावा कोई कुछ कह रहा है तो उसकी मति भ्रमित है। जैसे आम के पेड़ में अगर आप फल के अलावा सब कुछ चबाते रहो, आज पत्ती चबाएंगे या डाली चबाएंगे या ये चबाएंगे, तो ये मूर्खता है। फल चबाना है, फल चबाना मतलब फल का स्वादन करना है, और फल है कृष्ण भक्ति भागवतम के अनुसार हम समझते हैं। ठीक है, और जब वह भक्ति करता है तभी वह समझ पाएगा कि भगवान श्री कृष्ण मूल हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। बार बार जब हम भगवत गीता भागवतम सुनते हैं तो क्या होता है, हमारी मति स्थिर हो जाती है। भगवान प्रभुपाद जी इस बात को बोलते थे कि मेरी पुस्तकों का वितरण करके मेरे भक्त सुखी तो रहेंगे, लेकिन जब वो पढ़ेंगे तब वो रहेंगे, अर्थात चले नहीं जाएंगे। प्रायः लोग इवन कृष्ण की पूजा भी अगर कभी करते हैं तो बहुत बार लोग लौकिक रीति से करते हैं, लौकिक श्रद्धा। क्यों करते हैं, मम्मी करती थी लड्डू गोपाल की पूजा तो मैं भी करने लगा। लेकिन लड्डू गोपाल सारे सृष्टि के स्वामी हैं ये नहीं पता रहता, ये नहीं पता रहता। बल्कि हम एक व्यक्ति को जानते हैं तो वो उनके गुरुजी शिवजी की पूजा करते हैं और वो स्वयं जो है लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। तब देख रहे हैं कि श्रद्धा कुछ है नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कोई मंत्र कुछ भी किसी भी तरह से उनकी कुछ कष्ट को निवारण कर दिया तो गुरुजी शिवजी की पूजा कर रहे हैं और वो खुद लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो श्रद्धा जो है शास्त्रीय श्रद्धा नहीं। तो शास्त्र को बार बार सुनने से बहुत प्रेरणा मिलती है भगवान की शरण कर लेना, अनन्य शरण लेने। मान लीजिए कोई अनन्य ना भी हो बट अनन्य लेने की इच्छा होने लगती है सुनने से, ठीक है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। जैसे कुछ लोग कहते हैं, आज ही मैं जस्ट इस क्लास के पहले एक व्यक्ति आए जो कुछ लोगों को लेके आए थे, तो उस संप्रदाय का मत है कि भगवद गीता शिव बाबा ने बोली है। आश्चर्य की बात यह है कि गीता में कहीं शिव बाबा का नाम ही नहीं है, और लोग स्वीकार कर लेते हैं और यहाँ तक स्वीकार कर लेते हैं कि उनको डायरेक्ट भगवान ने बोला है कि शिव बाबा ने बोली है, पता नहीं क्या घोच पोच। तो इस प्रकार की व्यर्थ की टीकाओं को न स्वीकार करके व्यक्ति प्रामाणिक भक्तों की बात को स्वीकार करता है। यस, सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापने उपनिषद में कहा गया है, यो ब्रह्माणाम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश गाप्यति स्म कृष्णः। कितना सुंदर है, तो सब याद कर लेना चाहिए। देखिए उपनिषद और वेदों से सब बताया गया है। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण तो समझ जाना की जरूरत नहीं है ना। हाँ, ये स्टाइल थोड़ा अलग था भगवान का। भगवान को कोई ट्यूशन में नहीं भेजना पड़ा ब्रह्मा जी को, सीधे उन्हें हृदय में ज्ञान दे दिया। महाराज जी बोलते हैं बहुत बार यहाँ बच्चों को ट्यूशन में भेजते हैं, कोचिंग कराते हैं, फिर भी लड़का फेल हो जाता। लेकिन भगवान के लड़कों को भगवान ने ज्ञान देना चाहा तो बस सोच लिया और संकल्प से ही सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को हो गया, तो वहाँ ट्यूशन नहीं देना पड़ता। ठीक है, पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजा सृजयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्म जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायणाद इंद्रो जायते नारायणादष्टौ वसवो जायन्ते नारायणाद एकादश रुद्र जायन्ते नारायण द्वादश आदित्याः। तो समझ में आ रहा है इन सबसे उत्पत्ति हुई है, कुछ समझाना नहीं। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण से प्रजापति उत्पन्न हुए, नारायण से इंद्र और आठ वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही ग्यारह रुद्र तथा बारह आदित्य उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद नारायण खाली हो जाते हैं। लिखा है इसमें, है ना, इतने सारे बड़े बड़े लोग निकल गए तो खाली हो जाने चाहिए ना भगवान। ये भी एक मटेरियल कैलकुलेशन है, वन माइनस वन के बाद भगवान वन ही बचते, जितना भी आप भगवान से निकालिए फिर कितने बचते हैं, भगवान पूर्ण बचते हैं। और इसका एक और अच्छा प्रिंसिपल है, भगवान अगर आपको अपने आप को पूर्ण दे देते हैं तो फिर इनके लिए कितने बचे भगवान। समझ गए, कृष्णा कैन गिव हिमसेल्फ टू ऑल द डिवोटीज फुल्ली, भगवान अपने आप को बेच सकते हैं सबको। अजीब सी बात है ना, ये मृदंग आपको बेच दिया तो मैं इनको तो नहीं बेच सकता, लेकिन ये मृदंग आपको भी बेचा जा सकता है, ये इनको भी बेचा जा सकता है, और ये भी बजा सकते हैं, सबको बेचा जा सकता है। ये है इक्वेशंस आध्यात्मिक जगत, है ना। आप सोचते हैं ना कि भाई भगवान तो ऑलरेडी सबको दिए हुए हैं अपने आप को, तो मेरे को क्यों देंगे अपने आप को, क्योंकि उसके देने के बाद भी भगवान अशेष रहते हैं। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। देखिए, जो मैं कमेंट किया था वो किताब में नहीं है, ठीक है। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है, तो आप बताइए कि क्या कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ जाएगी। भाई नारायण जो पूरे सृष्टि के स्रोत हैं वो भी भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण कितने महान होंगे। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान हैं। नारायण उपनिषद, तब ये कहा गया, एको व नारायण आसीन न ब्रह्मा न ईशानो नापो न अग्नि समव नेमे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। क्या स्थिति रही होगी उस समय। और एक और सोचा है आपने कि भगवान ने सब कुछ अपनी इच्छा मात्र से पूरा कर दिया, कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ी। टेंशन केवल भगवान को टेंशन तो नहीं कहना चाहिए, टेंशन ही कहना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं बृहत भागवतामृत में, एंजाइटी केवल यही है भगवान की कि जीव उनकी तरफ उन्मुख हो जाए, और बस वो हो गया तो जीव की और जीव की सारी एंजाइटी भगवान खत्म कर देंगे। जो व्यक्ति पूरी सृष्टि की रचना कर सकता है केवल इच्छा मात्र से, तो उसके लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम ये है कि हम उन्मुख नहीं होते उनकी तरफ। ओके, कोई प्रश्न है यहां तक, कमेंट्स? ओके, महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए, अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्र प्रजापतिम च रुद्रम च अप्यहमेव सृजामि वै तौ हि माम न विजानीतो मम माया विमोहितौ। मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। कोई प्रश्न कर रहा था ना कि शिवजी और कैसे नहीं जानते। अद्भुत बात है कि भगवान ने ही सबकी सृष्टि करी है, कि माया इतनी प्रबल है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि ब्रह्मा जी एक बार भगवान कृष्ण के पास गए थे और भगवान कृष्ण ने बोला, कौन ब्रह्मा? तो फिर भगवान कृष्ण स्मरण करते हैं और बहुत सारे ब्रह्मा जी आते हैं और बाकी कोई ब्रह्मा नहीं देख पा रहा है कि अन्य लोग उपस्थित हैं। कैसी स्क्रीन थी ना, अमेजिंग। जैसे आप मान लीजिए महसूस कर रहे हैं ना कि मैं यहाँ पे अन्य भक्तों को भी क्लास दे रहा हूँ, और अन्य भक्त आप महसूस कर रहे हैं कि अन्य भक्त भी उपस्थित हैं। और अमेजिंग बात ऐसी हो कि मान लीजिए मैं सबको क्लास दूँ और सबको लगे कि मैं खाली उनको ही क्लास दे रहा हूँ, अन्य लोग उपस्थित नहीं हैं। जादू है कि नहीं? आपको व्यक्ति का प्रश्न करे, प्रभु जी इसको हम कैसे समझें, तो क्या उत्तर है भाई इसका? नहीं समझ सकते, खाली सुन लो और स्वीकार कर। कैसे समझोगे, करने की शक्ति है आपके पास? ठीक है, हाँ माइक पे बोलिए, माइक ऑन कीजिए। हाँ जी,
बारह महाजन जो है भगवान को तत्व से जानता, वैष्णवानाम
यथासंभव अर्थ हम। बार बार हमको ये प्रश्न दिया जाता है कि भाई महाजन लोग भगवान को जानते हैं, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए भगवान को जानने का अर्थ क्या है, यहाँ पे भगवान रसो वैसा रसमय है, तो अपनी भक्ति के कारण वो भगवान के रस को समझते हैं, लेकिन भगवान कैसे सृष्टि कर रहे हैं ये कोई भी नहीं समझता। अभी किसी ने प्रश्न किया था, भगवान आपने कहाँ प्रश्न किया था कि भगवान ने, हाँ इंग्लिश क्लास में किया था कि भगवान ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स को बनाया है, ये गलत बात है। यूनिवर्स ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, वो पहले से बना हुआ था, खाली ब्रह्मा जी जीवों के शरीर की सृष्टि करते हैं पूर्व कर्मानुसार। आप भागवत में देखिएगा जब ब्रह्मा जी तपस्या करते रहते हैं, फिर देखते हैं कि अरे ग्रह तो पहले से ही थे, खाली उनको समझ में आ गया अब अन्य अन्य जीवों को कैसे अपने कर्मों के अनुसार शरीर देना है। ये बात भी भगवान की शक्ति के द्वारा उनको मालूम चली। ग्रहों की संरचना भी उन्होंने नहीं करी, पहले से सारे कुछ थे, स्पष्ट इसमें लिखा हुआ। तो ये चीज़ जो है समझ में आना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा जी भी इंडिपेंडेंट क्रिएटर नहीं है। और आइए सोचिए कि ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह मंगल आरती के समय, समझ रहे हैं मेरा क्या अर्थ है, अर्थात ये कि सुबह सुबह भी प्रार्थना करते हैं जब भगवान का दर्शन प्राप्त होता है कि भगवान आपकी माया से मुझे बचा के रखिए। ये प्रार्थना हम लोग को भी करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति जो इतने शक्तिशाली हैं उनकी शक्ति कितनी शक्तिशाली होगी, बहुत, उसके आगे हम टिक नहीं सकते, लेकिन भगवान के शरणागत होंगे तो बच जाएंगे। माया से युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के शरणागत होंगे, श्रद्धा से स्वीकार कर करके कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण की इच्छा से माया से मुक्त हो जाएंगे। ओके, नारायण परो देवस तस्माद् जातः चतुर्मुख तस्माद् रुद्रो भवत् देवः स च सर्वज्ञतां गतः। एक चीज आपको याद है भागवतम से कि ब्रह्मा जी जब उत्पत्ति होती है तो पहला प्रश्न क्या होता है उनका कि मैं आया कहाँ से, तो है ना, याद आ रही ना बात कि उनको भी समझ में नहीं आया कि उनकी उत्पत्ति गर्भोदकशय विष्णु से हुई, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था। बाद में जब उन्हें तपस्या किया भगवान की बात सुन करके, फिर भगवान ने उसको रिवील किया। जितनी मात्रा में भगवान हमको रिवील करते हैं उतनी मात्रा में हम भगवान को समझ सकते हैं। तो महाजन लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो लोग भगवान के भक्ति में बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन भगवान को पूरा कोई नहीं जान सकता। ठीक है, भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ, सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। ये चीज़ सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन बहुत बार चीज़ें जब हमारे नियंत्रण के बाहर जाती हैं तब हमें बड़ा ख़राब लगता है, और हम ये भूल जाते हैं कि कृष्ण के नियंत्रण में जरूर हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? हम फ्रस्ट्रेट कब होते हैं? जब चीज़ें हमारे अनुसार, हमारे नियंत्रण के अनुसार नहीं चलती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं है, और भगवान की बुद्धि बिल्कुल सही चलती तो उस समय हरे कृष्णा कर लेना चाहिए। ठीक है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमने मैं प्रयास किया, भगवान के नियंत्रण में है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत में लगाता है। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर, और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सारी चतुराई करके हमें फिर मृत्यु को प्राप्त होना हो तो क्या चतुराई है? समझ में? बहुत चतुर हो लिए, इसको धोखा दे दिया, उसको धोखा दे दिया, ये कर लिया। आप लोग तो भक्त हो, लेकिन जगत में लोग, बहुत सारे लोग चतुराई करते हैं। देखो मैंने बहुत बढ़िया करियर बना लिया, ये कर लिया, और मच्छर की तरह मसल दिया था, मृत्यु की तरह, तो सारी चतुराई निकल गई कि नहीं निकल गई? लेकिन जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं वो भले ही जगत में कोई बड़ा ना बने, उनको बड़ा बनने की कोई जरूरत भी नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं है, बड़ा बन के करोगे क्या? और वो तो छोटा बनना चाहते हैं एक्चुअली, त्रिणादपि सुनिश्चित न होने का प्रयास करना चाहते हैं, और भगवान की भक्ति करके मृत्यु को लांघना चाहते हैं। ये असली चतुराई है। और ये भी देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति करने में कोई बहुत मेहनत नहीं है। किस चीज़ की सबसे अधिक जरूरत है? क्या क्या? श्रद्धा, प्रेम तो बहुत आगे आएगा, श्रद्धा की जरूरत है। और भक्तों की संघ की जरूरत है, भक्तों के संघ में श्रद्धा का निर्माण होता है। इसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना है, अभी कल ही मैं प्रीचिंग करने के लिए, कल नहीं कल आया ना, परसों क्लास दे रहा था, तो एक व्यक्ति बोले मेरे पिताजी कृष्ण का भजन तो नहीं करते थे लेकिन बड़े अच्छे व्यक्ति थे। तो हमने कहा आप ऐसा सोच सकते हो लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं सोचते कि कृष्ण कहते हैं नमाम, मैंने जोरदार डांट दिया उनको, मैंने कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृत ज्ञान आश्रम भावम आश्रित। जो कृष्ण बोल रहे हैं, बोलिए मैंने कहा देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं कि जो उनकी शरण में नहीं आ रहा है तो चाहे कितना भी ज्ञानी पुरुष हो वो मूढ़ है, वो नराधम है, माया अपृत ज्ञान है और आश्रम भावम आश्रित है। बहुत परेशान हो रहे थे बाद में, अगले दिन बोले प्रभु जी कल आपका क्लास सुबह भी हो सकता है क्या? मैंने कहा अगर आपको इतना, बाद में हम लोग सोच रहे थे अगर उनको कोई विश्वास नहीं था तो हमारी दोबारा क्लास क्यों सुनना चाहते थे। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी, इस संबंध में ही बोल रहा हूँ, वो बहुत जगह भटके आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, तो अब वो ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो बड़े परेशान हो गए, कहते उनको किसी में विश्वास नहीं है, ऐसा वो खुद बोल रहे थे। तो मैंने बाद में हम लोग उनसे तो कुछ नहीं बोले लेकिन बाद में हम चर्चा कर रहे थे कि अगर उनको अभी भी खोज नहीं है तो हमारी क्लास में क्यों आए, बंद कर दो, यानी अभी भी विश्वास है कहीं ना कहीं तो हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो यही बात हम भगवान गीता में बता रहे हैं, जो व्यक्ति समझ गया गीता सुनकर कि कृष्ण ही आश्रय हैं तो उनका ही शरण लेगा, भक्ति करेगा। भक्ति करने से, नाम जप करने से, भगवद गीता सुनने से धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि मेरी मदद केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, प्रमाणिक गुरु वैष्णव ही कर सकते हैं। ठीक है, ओके। केवल मूर्ख ही कृष्ण को समान व्यक्ति समझेगा, ये तो हम समझ गए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। जैसे अभी हमारे एक भक्त यहाँ बैठे हैं, उनको किसी ने बोला कि ये नाम जब तो मूढ़ लोगों की साधना है, मूर्खों की साधना है, इससे ऊपर भी कुछ है। और अद्भुत बात यह है कि उस व्यक्ति ने किस कोई आधार नहीं बताया किस आधार पे है, और जबकि हम लोग शास्त्र में क्या सुनते हैं, जो सुमेय दशा है वो भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसे ही मूर्ख लोग हैं। एक जगह हम एक भक्त घर में गए, बोले कृष्ण है लेकिन उनसे परे भी कुछ है, तो हमको बोल देना चाहिए कि उनसे परे आपकी मूर्खता है समझ रहे ना, और कुछ नहीं है, गीता में स्पष्ट लिखा है, उसके बाद परे कुछ है, मैं उसको मानता हूँ, कृष्ण को तो मानता हूँ, उससे परे कुछ मानता हूँ, तो ये मूर्खता है, नहीं स्वीकार करना चाहिए। उसे भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। एक स्मॉल कमेंट मेरा है इसमें कि टीकाओं को सुनना ही नहीं चाहिए, जो इधर उधर की टीकाएं हैं ना, मैं टीकाओं का अर्थ है मतलब जो फ्रॉड टीकाएं हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या बलदेव विद्याभूषण की टीकाओं की वर्णना करें, कहने का अर्थ है कि जो आचार्य परंपरा में नहीं है वो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन जरूर कर रहे हैं, और स्पेकुलेशन मतलब उन्हें पता नहीं है और वो सोचेंगे ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि शरणागति का अर्थ क्या है वो स्पेकुलेशन ही करेगा, तो ऐसे व्यक्ति की बात सुन करके हम कभी भी कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, तो हम रुकेंगे। एनी क्वेश्चंस? हाँ सुमधुर प्रभु माइक दीजिए। बोलिए बोलिए।
इसमें महा उपनिषद में बोला गया कि जो शिव जी है परमेश्वर के मस्तक से प्रकट हुए हैं।
हाँ।
और यहाँ पे बराह पुराण में बोला गया कि ये ब्रह्मा से शिव पे उत्पन्न हुए।
अलग अलग कल्पों में अलग अलग ऐसा हो सकता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि एक बार इसमें लिखा है शिव जी भगवान के मस्तक से प्रकट हुए हैं, और एक जगह लिखा है कि ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए हैं, तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से सृष्टि हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय।